देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। महाराज युधिष्ठिर ने खूब ज्ञान लिया पितामह भीष्म से, और पितामह भीष्म ने सब प्रकार का ज्ञान देकर के उनको विदा किया। सब लोग हस्तिनापुर आ गए। वैशंपायन जी कहते हैं आगे, हस्तिनापुर में जाने के बाद कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नगर और प्रांत के लोगों का यथोचित सम्मान किया और उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी। इसके बाद जिन स्त्रियों के पति और पुत्र युद्ध में मारे गए थे उन सबके घर गए, सबके महलों में गए, सबको धैर्य बनाया, सबको पूछा किसी प्रकार की आपके जीवन निर्वाह में कोई वस्तु की कमी है क्या। देखा कि इनके पास अमुक वस्तु की कमी है तो जो उन्होंने चाहा उससे ज्यादा उनको धन देकर संतुष्ट किया। युधिष्ठिर का राज सिंहासन के ऊपर अभिषेक करने के बाद उनके मंत्री वगैरह सब बड़े उत्तम ढंग से काम करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने 50 दिनों तक हस्तिनापुर में रहने के बाद जब देखा कि सूर्यदेव दक्षिणायन से निवृत्त होकर उत्तरायण में आ रहे हैं तो उन्हें अपने पितामह भीष्म जी की मृत्यु का स्मरण हुआया और वे यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के साथ हस्तिनापुर से चलने के लिए तैयार हुए। जाने से पहले उन्होंने भीष्म जी का अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए घृत माला, सुगंधित द्रव्य, रेशमी वस्त्र, चंदन, काला अगरू, अच्छे अच्छे फूल और नाना प्रकार के रत्न आदि सामग्री पहले भेज दी। फिर धृतराष्ट्र और गांधारी को आगे करके माता कुंती, सब भाई, भगवान श्री कृष्ण, बुद्धिमान विदुर और सात्यकी को साथ लेकर वे नगर से बाहर निकले। उनके साथ रथ, हाथी, घोड़े और जितने राजाओं के उपकरण होते हैं सब प्रकार का वैभव ठाट बाट उनके साथ चल रहा था। बंदीजन उनकी स्तुति करते हुए चलते थे। महातेजस्वी युधिष्ठिर भीष्म जी के स्थापित किए हुए त्रिविध अग्नियों को आगे रखकर स्वयं पीछे पीछे चल रहे थे। ठीक समय पर कुरुक्षेत्र में शांतनु नंदन भीष्म के पास पहुंच गए। उस समय वहां पराशर नंदन व्यास, देवर्षि नारद और देवल ऋषि उनके पास बैठे हुए थे तथा महाभारत युद्ध में मरने से बचे हुए अन्य अन्य देशों से आए हुए बहुत से राजा उन महात्मा की सब ओर से रक्षा में बैठे हुए थे। धर्मराज युधिष्ठिर दूर से ही वीर शैया पर सोए हुए भीष्म का दर्शन करके भाइयों सहित रथ से उतर पड़े और निकट में जाकर उन्होंने पितामह भीष्म तथा व्यास आदि महर्षियों को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। इसके बाद महर्षियों ने भी युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। फिर वे ऋषियों से घिरे हुए पितामह के पास जाकर बोले, दादाजी मैं युधिष्ठिर आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आपके चरणों में विनम्र एवं श्रद्धा भाव से प्रणाम करता हूं। यदि आपको मेरी बात सुनाई देती हो और यदि आप आज्ञा देने में, वाणी के उच्चारण करने में कोई कष्ट का अनुभव न करते हो तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपके बताए हुए समय पर मैं अग्नियों को लेकर यहां उपस्थित हुआ हूं। आपके महातेजस्वी पुत्र राजा धृतराष्ट्र भी अपने मंत्रियों के साथ यहां पधारे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण मरने से बचे हुए समस्त राजा और कुरु जंगल देश के लोग भी यहां आए हुए हैं। दादाजी, आप एक बार आंख खोलकर सबकी ओर कृपा की दृष्टि से देखिए। आपके कथनानुसार इस समय के लिए जो कुछ करना आवश्यक था वो सब कर लिया गया है। सभी उपयोगी वस्तुओं का प्रबंध हो चुका है। परम बुद्धिमान युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर गंगानंदन भीष्म जी ने आंख खोलकर अपने चारों ओर खड़े हुए समस्त भरतवंशी राजाओं की ओर देखा। फिर युधिष्ठिर को अपने पास आने का संकेत किया। युधिष्ठिर उनके एकदम पास में पहुंच गए। फिर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, बेटा युधिष्ठिर, तुम अपने मंत्रियों सहित यहां आ गए, बहुत अच्छी बात हुई। भगवान सूर्य अब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आ गए हैं। इन तीखे बाणों की शैया पर शयन करते हुए आज मुझे 58 दिन हो गए, किंतु ये दिन मेरे लिए 100 वर्ष के समान बीते हैं। इस समय चांद्र मास के अनुसार माघ का महीना प्राप्त हुआ है। इसका ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, जिसका भी एक भाग बीत चुका है और 3 भाग बाकी है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कहकर भीष्म जी ने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, धृतराष्ट्र, तुम धर्म को अच्छी तरह से जानते होंगे, तुम अर्थ तत्व का भी भली भांति निर्णय किए हुए हो। मैं समझता हूं तुम्हारे मन में इन सब प्रकार की परिस्थितियों से अब कोई संदेह नहीं रह गया होगा, क्योंकि तुमने अनेकों शास्त्रों का अध्ययन रखने वाले बहुत से विद्वान ब्राह्मणों की सेवा की है। संपूर्ण वेदों, शास्त्रों और धर्मों का तुम्हें पूरा का पूरा ज्ञान है। धृतराष्ट्र, अब तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ है वैसा सब होनहार थी। तुमने कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से देवताओं का रहस्य भी सुन लिया होगा ना? उन देवताओं के रचे हुए कार्यक्रम के अनुसार महाभारत का युद्ध हुआ है। अब मैं जाते जाते तुमको कुछ विशेष बात कहकर के जाता हूं। ये पांडव जैसे राजा पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही धर्म की दृष्टि से अब तुम्हारे पुत्र हैं। इस बात को सदा याद रखना। ये पांडव सदा गुरुजनों की सेवा में लगे रहे। इन्होंने धर्म में स्थित होकर सब प्रकार का काम किया, युद्ध भी किया तो धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए अब तुम भी धर्म में स्थित रहकर अपने पुत्रों के समान इनकी रक्षा करना। धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय बहुत विशाल है, ये मैं जानता हूं। ये तुम्हारी आज्ञा में रहेंगे। इनका स्वभाव बहुत कोमल है। ये गुरुजनों के प्रति बड़ी भक्ति रखने वाले हैं। धृतराष्ट्र, सच पूछा जाए, तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्या रखने वाले दुराचारी थे। अब वो चले गए, उनके लिए अब कभी शोक मत करना। धृतराष्ट्र से कहने के बाद भीष्म जी मुस्कुराते हुए पूर्ण आनंद में डूबे हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, भगवान जब कभी आपका स्मरण करता था, जब कभी मैं आपके दर्शन करता था, मुझे अपार आनंद का अनुभव होता था। आप देवताओं के भी देवता हैं, देवता और असुर आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। अपने तीन चरणों से त्रिलोकी को नापने वाले हे भगवान वामन, मैं आपकी लीलाओं में बहुत डूबा रहता हूं और बार बार आपको प्रणाम करता हूं। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले वासुदेव, आपका कोई एक नाम नहीं, हिरण्यात्मा, पुरुष, सविता, विराट, कितने कितने नाम हैं। नाम नहीं, जो कुछ संसार में देखने में आता है वो आपका स्वरूप है। सच कृष्ण इन बाणों की सैया पर पड़े हुए इस जर्जरित शरीर में जब भयंकर पीड़ा होती है, तब मैं कहता हूं इस पीड़ा में भी कृष्ण है, इन बाणों में भी कृष्ण है, और इस जर्जरित शरीर में कृष्ण है। जो ही मेरा भाव दर्द में कृष्ण है ये होता है, उस समय सच कहता हूं मेरा दर्द कहीं का कहीं भाग जाता है। हे कृष्ण, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाते जाते आपसे फिर प्रार्थना करता हूं, सदा आपकी शरण में रहने वाले इन धर्मात्मा पांडु पुत्रों की सब प्रकार से रक्षा करते रहिए। लोगों के मन में ये बात रहेगी कि भीष्म ने दुर्योधन का पक्ष क्यों लिया, इसका रहस्य केवल आपके अलावा दूसरा कोई नहीं जानता। वैसे मैंने दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह कहकर समझाया था कि दुर्योधन याद रखो, जहां कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां विजय है। इसलिए बेटा दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। संधि के लिए बड़ा अच्छा अवसर हाथ लगा है। तुम्हारे जीवन में दो बात होगी, कृष्ण के कहने से संधि करोगे तो कृष्ण में तुम्हारी भक्ति होगी, कृष्ण के कहने से संधि करोगे तो कृष्ण की तुम्हारे पर कृपा बरसेगी। हम सब लोगों का मन तुम्हारे साथ होगा। बहुत समझाया, बार बार कहने पर भी उस मूर्ख ने मेरी बात नहीं मानी और सारी पृथ्वी के वीरों का नाश कराकर वह स्वयं भी काल के गाल में चला गया। भगवान, मैं युद्ध में आपके विपरीत क्यों खड़ा था वो मेरा मन जानता है और आप जानते हो। मैं कितना भी युद्ध कर रहा था, यदि मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता तो आपके निरंतर दर्शन मुझे कैसे होते। आपके पक्ष में रहकर मैं दुर्योधन को देखते देखते युद्ध करता तो आपकी भक्ति जो मेरे अंदर सदा से ही है वो भक्ति विस्तृत नहीं होती। इसलिए मैं तो केवल आपके दर्शन करने के लिए आपकी सेना से विपरीत खड़ा हुआ, सामने खड़ा हुआ। आप ही भी पुरातन ऋषि नारायण हैं, जो नर के रूप में यहां अर्जुन के साथ आए हैं। चिरकाल तक आप बद्री का आश्रम में निवास करते हैं। देवर्षि नारद और महातपस्वी व्यास जी ने मुझे बहुत पहले ही कह दिया था कि कृष्ण और अर्जुन आपको पितामह भले ही कह दें, वो एक लीला में बोलेंगे, व्यवहार में बोलेंगे, परंतु सारे संसार के पितामह तो कृष्ण और अर्जुन, नारायण और नर ही हैं, जो मानव शरीर में अवतीर्ण हुए। कृष्ण, क्या तुम्हारा सुंदर मुख मैं देख रहा हूं, कैसी अनुपम रूप छटा आपकी मुखारविंद से बरस रही है, कैसी कृपा हो रही है। कृष्ण, बस तुमको निहारता हुआ, तुमसे बात करता हुआ अब शरीर का त्याग करूंगा, आपकी आज्ञा होगी तो मुझे परम गति की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म जी, मैं आपको सहर्ष आज्ञा देता हूं, आप वसुलोक को जाइए, इस लोक में आपके द्वारा दुर्योधन का पक्ष रखते हुए भी किंचिन मात्र भी पाप नहीं हुआ है, वो मैं जानता हूं। आप दूसरे मार्कंडेय के समान पितृभक्त हैं, इसलिए मृत्यु विनीत दासी के भांति आपके वश में है। भगवान के ऐसा कहने पर भीष्म ने सबको हाथ जोड़ते हुए कहा, अब मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूं, आप सब लोग मुझे इसकी आज्ञा दें। पुत्रों, सदा सत्य धर्म का पालन करते रहना, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा बल है। तुम लोगों को सबके साथ कोमलता का बर्ताव करना होगा, अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति करनी होगी, अपने धर्म में निष्ठा रखते हुए तपस्वी जीवन व्यतीत करना, और सबसे बड़ी बात, तुम श्री कृष्ण का आश्रय कभी मत छोड़ना। यह कहकर भीष्म ने सबको अपने गले लगाया और युधिष्ठिर से बार बार कहा, पुत्र, तुम सामान्यतः सभी ब्राह्मणों की, विशेषतः बुद्धिमानों की, और भी विशेषतः भक्तजनों की विशेष पूजा करते रहना। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, समस्त कौरवों से इस प्रकार कहकर शांतनु नंदन भीष्म जी कुछ देर तक चुप रहे। तदनंतर उन्होंने मन सहित प्राणवायु को भिन्न भिन्न धारणाओं में स्थापित किया। इस तरह योगिक क्रिया के द्वारा रोके हुए महात्मा भीष्म जी के प्राण क्रम से ऊपर चढ़ने लगे। उस समय वहां एकत्रित हुए सभी संत महात्माओं के बीच एक बहुत बड़े आश्चर्य की घटना घटी। व्यास आदि सब महर्षियों ने देखा कि शांतुनंदन भीष्म का प्राण जिनके जिस जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठता था, उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते थे और उनका घाव एकदम भर जाता था। कोई कह नहीं सकता था कि यहां इनके बाण भी लगे हुए थे क्या। इस प्रकार देखते देखते भीष्म जी का शरीर क्षण भर में बाण से रहित हो गया। भगवान श्री कृष्ण बड़े गौर से इस बात को देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण बड़े गंभीर मुद्रा में भीष्म जी की इस शरीर छूटने की क्रिया को देख रहे थे। भीष्म जी ने अपने देह के सभी दरवाजों को बंद करके प्राण को सब ओर से रोक लिया, इसलिए अब उनका मस्तक माने ब्रह्मरंध्र था, वायु को निकलने की जगह केवल यहां ब्रह्मरंध्र से मिली और आकाश को फोड़कर ये ब्रह्मरंध्र को फोड़कर और अंत में एक बहुत बड़ी ओंकार की ध्वनि के साथ ओ प्राण निकल गए। जो ही भीष्म पितामह के प्राण निकले, देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, फूलों की वर्षा की, सिद्धों और महर्षियों को बड़ा हर्ष हुआ। वे भीष्म जी को साधुवाद कहने लगे। भीष्म का प्राण उनके ब्रह्मरंध्र से निकलकर उल्का के भांति आकाश की ओर उड़ा, क्षण भर में अदृश्य हो गया। इस प्रकार भरतवंश का भार वहन करने वाले शांतनु नंदन भीष्म जी अब काल के अधीन हो गए। भगवान श्री कृष्ण चुपचाप मृत भीष्म को देख रहे थे। तदनंतर बहुत से काष्ठ और नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य लेकर महात्मा पांडव, विदुर, युयुत्सु ने चिता तैयार की। बाकी सब लोग खड़े देखते रहे। तत्पश्चात युधिष्ठिर और विदुर जी ने भीष्म को चिता पर सुलाकर उन्हें रेशमी वस्त्रों और फूलों की मालाओं से लाद दिया। उस समय युयुत्सु ने उनके ऊपर छत्र लगाया। भीमसेन और अर्जुन श्वेत चमर और व्यजन डुलाने लगे। माद्री कुमार, नकुल और सहदेव ने उनके सिर पर पगड़ी बांधी। कुरुकुल की स्त्रियां ताड़ के पंखे लेकर उनके चारों ओर हवा करने लगी। फिर पांडवों ने विधिपूर्वक समयोचित पितृमेद किया और भीष्म के शव को संस्कार करते हुए अग्नि में बहुत सी आहुतियां डाली। उस समय सामवेद के विद्वान ब्राह्मण सामगान करने लगे और धृतराष्ट्र ने चंदन की लकड़ी और सुगंधित वस्तुओं से भीष्म के शरीर को आच्छादित करके उनकी चिता में आग लगा दी। फिर धृतराष्ट्र आदि सब कौरवों ने उस जलती हुई चिता की प्रदक्षिणा की। इस प्रकार भीष्म जी का दाह संस्कार करके समस्त कौरव अपने कुल की स्त्रियों के साथ कुल की स्त्रियों को साथ लेकर ऋषि मुनियों से सेवित उस परम पवित्र भागीरथी के तट पर गए। उनके साथ महर्षि व्यास, देवर्षि नारद, असित, देवल, भगवान श्री कृष्ण तथा नगर निवासी मनुष्य भी थे। जहां पहुंचकर सब लोगों ने विधि पूर्वक महात्मा भीष्म को जलांजलि दी। उस समय अपने पुत्र भीष्म को जलांजलि देने का कार्य पूरा होने पर भगवती भागीरथी जल के ऊपर एकदम प्रकट हो गई और शोक से विकल हो कौरवों से रो रो कर कहने लगी, प्रिय पुत्रों मेरी बात सुनो। भीष्म राजोचित सदाचार से संपन्न थे, उनकी बुद्धि बड़ी पवित्र थी, उनका जन्म बहुत उत्तम कुल में हुआ था। वे कुरुकुल के वृद्ध पुरुषों का सत्कार करने वाले और अपने पिता के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में महान व्रत का पालन किया था। जमदग्नि कुमार परशुराम जी भी अपने दिव्य अस्त्रों के द्वारा उन्हें परास्त नहीं कर सके थे, परंतु वे ही महापराक्रमी भीष्म शिखंडी के हाथों से मारे गए। ये कितने दुख की बात है। अवश्य ही मेरा हृदय पत्थर का बना हुआ है, तभी तो अपने पुत्र को जीवित न देखकर वो फटा नहीं जा रहा है। काशीपुरी के स्वयंवर में समस्त क्षत्रियों का एकत्रित होना और उन सबको अकेले भीष्म ने पराजित करके काशीराज की कन्याओं का अपहरण करना, ये उन्हीं के ही हाथ की बात थी। हाय, बल में जिनकी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई वीर नहीं, उन्हीं को शिखंडी के हाथ से मारे गए सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती। जिन्होंने कुरुक्षेत्र के ही मैदान में युद्ध करके परशुराम को अनायास ही कष्ट में डाल दिया था, उनकी मृत्यु शिखंडी के हाथ से हुई, बड़ा आश्चर्य है। ऐसी बातें कहकर जब गंगा जी बहुत विलाप करने लगी तो भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा, गंगे क्यों शोक करती हो, धैर्य धारण करो, सोचो तुम्हारे यहां भीष्म कब आए थे, क्यों आए थे, कहां से आए थे। तुम्हारे पुत्र भीष्म जी अत्यंत उत्तम लोक में गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। वे महातेजस्वी वसु थे, वशिष्ठ मुनि के शाप से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, उनके लिए तुम शोक करती हो। ऐसे महापुरुष के महाप्रयाण पर तो गौरव करना चाहिए, आनंद का अनुभव करना चाहिए। जिन्होंने अपने सम्रांगण में क्षत्रिय धर्म के अनुसार पवित्र पूर्वक युद्ध किया, वे शिखंडी से नहीं मरे, वे अर्जुन के द्वारा मारे गए हैं। शिखंडी की तो आड़ थी, सच पूछा जाए तो शिखंडी की आड़ अर्थात वो धर्म की आड़ थी। शिखंडी पर बाण न चलाना उनका धर्म था, वे अपने धर्म में स्थित रहे। भीष्म का शरीर जाया गया है, भीष्म का धर्म नहीं गया है। देवी, तुम्हारे पुत्र कुरुश्रेष्ठ भीष्म जब हाथ में धनुष बाण लिए रहते, उस समय साक्षात इंद्र भी उन्हें मारने में समर्थ नहीं थे। वे तो अपनी इच्छा से शरीर त्याग कर दिव्य लोक में गए, संपूर्ण देवता मिलकर भी युद्ध में उनको मारने की शक्ति नहीं रखते। इसलिए तुमको ये शोक नहीं करना चाहिए कि वो शिखंडी जैसे नपुंसक से मरे हैं। नहीं, परम वीर नरावतार अर्जुन के बाण से मरे हैं, क्योंकि अर्जुन जैसा पवित्र बाण सारे योद्धाओं में किसी के पास नहीं था। अब वे अपने वसु स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। गंगा जी, आप अपनी चिंता छोड़ दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान कृष्ण के ऐसे तेजस्वी ओजस्वी एवं सांत्वनामय वचनों को सुना तो गंगा जी ने शोक छोड़ दिया और कृष्ण को प्रणाम करती हुई वे अपनी धारा में बह गए। और श्री कृष्ण आदि सब लोग गंगा जी का सत्कार करके उनकी आज्ञा से वहां से लौट गए। भीष्म जी को जलांजलि देने के बाद महाराज धृतराष्ट्र को आगे करके महाबाहु युधिष्ठिर पानी से बाहर आए। उस समय उनकी संपूर्ण इंद्रियां शोक से व्याकुल हो रही थी। बाहर आने पर वे दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा बहाते हुए गंगा जी के तट पर गिर पड़े। राजा को इतना दीन और हतोत्साह देखकर पांडव फिर शोक में डूब गए और उनको चारों तरफ से घेर कर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा, राजन, यदि मनुष्य मरे हुए प्राणी के लिए अपने मन में अधिक शोक करता है तो उसके परलोकवासी पिता पितामह आदि बहुत संतप्त होते हैं। इसलिए आप बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले नए नए प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके सोमरस से देवताओं को और स्वधा माने श्राद्ध के द्वारा पितरों को तृप्त कीजिए। अतिथियों को अन्न और जल देकर अकिंचन मनुष्यों को उनकी इच्छाएं पूर्ण करके संतुष्ट कीजिए। आपने तो जानने योग्य तत्व को प्राप्त कर लिया था, करने योग्य कार्य को आपने कर लिया था। भीष्म व्यास नारद और विदुर के मुख से राजाओं के धर्म का श्रवण भी कर लिया था, फिर आपके चेहरे पर ये शोक उस ज्ञान का निरादर है जो पितामह भीष्म ने तुमको बड़े परिश्रम से सुनाया था। उठो, पितामह का अभी कार्य बाकी, उसको पूरा करो। जो हो रहा है उसको तटस्थ भाव से देखो, होने वाले के साथ क्यों मिलते हो, शोक मत करो। युद्ध में जो गए वे वापस तुमको दिखने वाले नहीं, और एक दिन तुम भी तो यहां नहीं रहोगे, इस बात पर विचार करो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाराज, मेरे हृदय के कुछ भाव आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। अब ये भाव कल बताए जाएंगे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।